श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 83 कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरु तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर तथा अपने अन्य सभी संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देखकर समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का चख कर पान किया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उढ़ेला जाता है। यह देहदारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मृति को विनष्ट करता है। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह मानव रूप धारण किया है जो काल क्रम से संकट ग्रस्त हो गए थे। हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे तो अंधक तथा कौरव वंश की महिलाएं एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषयक कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो, क्योंकि मैं तुमसे इनका वर्णन करने जा रहा हूं। श्री द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भी, हे भद्रा, हे जांबवती, हे कौशला, हे सत्यभामा तथा कालिंदी, हे शैव्या, रोहिणी, लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी योग शक्ति से इस संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आप में से हर एक से विवाह किया। श्री रुक्मणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजेय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूली रखने वाले ने उनके बीच में से उसी तरह मेरा हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि लक्ष्मी धाम भगवान कृष्ण के उन पावों की पूजा मुझे करने को मिले। श्री सत्य भामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखी था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने अपने यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए ऋचों के राजा को हराया और त्यमंतक मणि वापस लेकर उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रधान कर दिया। यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वायदा वरदान किया जा चुका था। श्री जांबवती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव देवी सीता के पति हैं, मेरे पिता उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा स्यामंतक मणि दोनों को आदर के प्रतीक रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र हुई। श्री कालिंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतएव वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पाणी ग्रहण किया। अब मैं उनके महल को बुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। श्री मित्र विंदा ने कहा, मेरे स्वयंवर समारोह में वे आगे बढ़ आए। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले गए जिस तरह सिंह कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठा ले जाता है। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। श्री सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ पाणी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पहने सींगों वाले 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले सांडों की व्यवस्था की। यद्यपि ये सांड अनेक वीरों के मिथ्या गर्व को चूर चूर कर चुके थे, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के ही उन्हें वश में करके बांध लिया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं, इस तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा चतुरंगणी सेना समेत ले गए। मेरी यही अभिलाषा है कि उन प्रभु की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहे। श्री भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले ही अपना हृदय सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षोहिणी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दी थी। मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंध कर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। श्री लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी, मैंने नारद मुनि को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना और इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। दरअसल देवी पद्महस्ता ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। मेरे पिता बृहत तेज स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे, और हे साध्वी, यह जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। हे रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग लक्ष्य के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति रूप में पा सकें, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ, किंतु मेरे संबंध में यह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जल पात्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। यह सुनकर बाण चलाने तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने में दक्ष हजारों राजा अपने सैन्य शिक्षकों के साथ मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं से एकत्र हुए। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल तथा वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया, किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके। अतएव हताश होकर उन्होंने उसे एक और फेंक दिया। कुछ ने धनुष की डोरी को धनुष के एक तीरे तक खींच तो लिया, किंतु इससे धनुष पीछे उछला और उन्हें ही जमीन पर पटक दिया। कुछ वीर यथा जरासन, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण तथा अम्बष्ट राज धनुष पर डोरी चढ़ाने में सफल तो रहे, किंतु इनमें से कोई भी लक्ष्य को ढूंढ नहीं सका। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की, किंतु जब उसने सावधानी से उस पर अपना बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अपितु मात्र उसको स्पर्श करके निकल गया। जब सारे दंभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया, आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थिर किया। जो ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र में आया तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। आकाश में दुंदुबियां बजने लगी और पृथ्वी पर लोग जय जय की ध्वनि करने लगे। देवताओं ने अति प्रसन्न होकर फूल बरसाए। तभी मैं रंगशाला में गई। मेरे पांव के नूपुर मंद ध्वनि कर रहे थे। मैं उत्तम कोटि के रेशम के नए वस्त्र पहने थी, जिसके ऊपर करदनी बंधी थी, और मैं सोने तथा रत्नों से बना चमकीला हार धारण किए थी। मेरे मुख पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। मैंने अपना सिर उठाया, जो मेरे प्रचुर बालों के गुच्छों तथा मेरे गालों से परावर्तित मेरे कुंडलों की चमक के तेज से घिरा था। मैंने शांत भाव से मंद हाथ के साथ इधर उधर दृष्टि फेरी। तब चारों ओर सारे राजाओं को देखते हुए मैंने धीरे से हार को मुरारी के कंधों गले पर डाल दिया, जिसने मेरे मन को हर रखा था। तभी शंखों तथा मृदंग, पटह, पेरी और आनक नगाड़ों एवं अन्य वाद्य जोर जोर से बजने लगे। नट तथा नर्तकियां नाचने लगे और गवैये गाने लगे। हे द्रौपदी, मेरे द्वारा भगवान का चुना जाना प्रमुख राजाओं को सहन नहीं हो सका। वे कामातुर होने के कारण लड़ने झगड़ने लगे। तत्पश्चात भगवान ने मुझे चार अतीव उत्तम गुणों से खींचे जाने वाले अपने रथ में बिठा लिया। अपना कवच पहन कर तथा अपना शारडंग धनुष तैयार करके वे रथ पर खड़े हो गए और युद्ध भूमि में उन्होंने अपनी चार भुजाएं प्रकट की। हे रानी, सारसी धारुक राजाओं के देखते देखते भगवान के सुनहरे किनारों वाले रथ को उसी तरह हांक ले गया जिस तरह छोटे छोटे पशु निस्सहाय होकर सिंह को देखते रह जाते हैं। राजाओं ने भगवान का पीछा किया जिस तरह सिंह का पीछा गांव के कुत्ते करते हैं। कुछ राजा अपने धनुष उठाए हुए उन्हें जाने से रोकने के लिए मार्ग में आ डटे। ये योद्धा भगवान के चारटंग धनुष द्वारा छोड़े गए बाणों से अभिभूत हो गए। कुछ राजाओं की भुजाएं, टांगे तथा गर्दने कट गई और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। शेष लड़ना छोड़कर भाग गए। तब यदुपति ने अपनी राजधानी कुशस्थली द्वारका में प्रवेश किया जो स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर प्रशंसित है। नगर को पताकाओं से युक्त दंडों से सजाया गया था जो सूर्य को ढक रहे थे तथा शानदार तोरण भी लगाए गए थे। जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो वे ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य देव अपने धाम में प्रवेश कर रहे हों। मेरे पिताजी ने अपने मित्रों, परिवार वालों तथा मेरे ससुराल वालों का सम्मान बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, राजसी पलंगों, सिंहासनों तथा अन्य साज सामग्री से किया। उन्होंने परम पूर्ण भगवान को भक्ति पूर्वक अनेक दासियां दी जो बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थी। इन दासियों के साथ अंगरक्षक थे जिनमें से कुछ पैदल थे तो कुछ हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने भगवान को अत्यंत मूल्यवान हथियार भी दिए। इस तरह समस्त भौतिक संगति का परित्याग करके तथा तपस्या करके हम सारी रानियां आत्मा राम भगवान की दासियां बन चुकी हैं। अन्य रानियों की ओर से रोहिणी देवी ने कहा, बौमासुर तथा उसके अनुयायियों का वध करने के बाद भगवान ने हमें उस असुर के बंदी ग्रह में पाया और वे यह समझ गए कि हम उन राजाओं की कन्याएं हैं जिन्हें भौम ने पृथ्वी पर विजय करते समय पराजित किया था। भगवान ने हमें बंदी ग्रह से मुक्त कराया और चूंकि हम भौतिक बंधन से मोक्ष के स्रोत उन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती रही थी, इसलिए वे हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। यद्यपि उनकी हर इच्छा पहले से पूरी रहती है। हे साध्वी, हमें पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता या भगवत धाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के उन चरणों की यशस्वी धूल को अपने सिर पर धारण करें जो उनकी प्रियतमा के स्तन के कुमकुम की सुगंधी से युक्त है। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो व्रज की तरुणियों ग्वाल भालों तथा आदिवासिनी पुलिंग स्त्रियां चाहती हैं। वह है भगवान द्वारा अपनी गोवें चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट नामक 83वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।